الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो आज की क्लास में हम उन्हीं आयात को पढ़ रहे हैं जो कि पिछली क्लास में और पहली क्लास में हमने पढ़ी थी। सूरह बनी इसराइल की आयात नंबर 101 से 109 तक। ये तकरीबन सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयात हैं। इनके बाद सिर्फ दो और आयात रह जाती हैं। नाम ही इस सूरत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल रखवाया। दूसरा नाम भी मशहूर है, सूरह इसरा, क्योंकि इसके इब्तिदा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज के सफ़र का जिक्र हुआ, जिसमें इसरा का सफ़र जो है वो पहले मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस तक हुआ, और फिर मेराज का सफ़र बैतुल मुकद्दस से आसमानों तक हुआ। और मेराज का जिक्र करने के फौरन बाद ही फिर बनी इसराइल का जिक्र अल्लाह ताला ने किया था इस सूरत के अंदर, कि उनके ऊपर हमने कैसे अपने अजाबों को मुसल्लत किया, क्योंकि उन्होंने फिर नाफरमानी करी हमारे हुक्मों की। और फिर इस सूरत के आखिर में दोबारा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का जिक्र फरमाया। तो वही हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे खुलासे तफसीर के उनवान के तहत, जो कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है दरअसल, जिसको हज़रत मुफ्ती शफ़ी ने यहाँ पर खुलासे तफसीर के उनवान में जिक्र कर दिया है। तो कल काफ़ी अहम बातें इसमें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले तो ये थी कि ये फिरौन ने जो बनी इसराइल को उखाड़ने की कोशिश शुरू करी थी, तो इसका क्या मतलब था और ये उसने क्यों करी थी। ठीक है, पहले तो एक कैजुअल जो है वो सिलसिला था खादिम और मखदूम का, कि बनी इसराइल उसके पास कब्तियों के जो है वो कब्तियों के खादिम बन गए थे, उनके अंडर आ गए थे। और फिर उसके बाद जब उसको मूसा अलैहिस्सलाम का पता चला, ठीक है, उसको कैसे पता चला था मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उसको ख्वाब आया था कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में और वो उससे उसकी सल्तनत को छीन लेगा। तो यहाँ से उसके जो है ना फिर बड़े ही खौफनाक मजालिम शुरू हुए थे। और उसमें उसने क्या किया था कि उसने बनी इसराइल के पैदा होने वाले बेटों को ज़बह करवाना शुरू कर दिया था और बेटियों को जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया था। ये लोग उनके काम करने वाले थे, पेजेंट्स थे, उनके खेतों में काम करने वाले, उनके जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो थे उनके अंदर काम करने वाले। तो जब उसने ये फैसला किया कि हम इनके सारे बेटों को जो है वो कत्ल कर देंगे, तो उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इकोनॉमी के जो उसके जो 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 मुशीर थे, एडवाइजर्स थे, तो उन्होंने उसको कहा कि यही लोग तो हमारी वर्क फोर्स हैं, यही लोग तो हमारी वर्क फोर्स हैं, ये हमारे क्या हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, राइट, ये हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ये हमारी वर्क फोर्स हैं। तो अगर आप जो है वो इनके सारे जो काम करने वाले मर्द मर्द ही फिजिकल काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मर्द ही कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे कितना ही फेमिनिज्म को फ़रोग दिया जाए, चाहे कितना ही औरतों को घरों से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन बिल आखिर जो शिद्दत वाले काम करने के हैं ना वो तो मर्दों ने ही करने हैं। ठीक है, तो अब औरतों को तो जॉब दिलवाई जाती है जो उसके अलग मकासद होते हैं, उसके उनको दफ्तरों के अंदर भरा जाता है, उसके अलग मकासद होते हैं, लेकिन काम तो बिलाखिर मर्दों ने करना है। जैसे कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों के अंदर मशहूर है कि जो लोकल है ना उनको जॉब के अंदर भरा जाए, लेकिन काम किसने करना होता है? काम जो है वो एक्सपैट्स ने करना होता है, ठीक है ना? काम किसने करना होता है? पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, बंगालियों ने, राइट? और बाहर से जो आए हुए वर्कर्स होते हैं उन्होंने करना होता है, लेकिन फिर भी नौकरी जो है ना वो लोकल्स को देनी होती है, ठीक है? तो उसी तरीके से काम जो है वो मर्दों ने करना होता है, लेकिन नौकरी फिर भी औरतों को देनी होती है, क्योंकि औरतों को नौकरी देने का अलग मकसद है ना, ठीक है? वो मकसद पूरा करते हैं इस तरीके से। बहरहाल, तो ये जो हमारे काम करने वाले हैं इनको आप कत्ल कर देंगे तो फिर हमारे पास वर्क फोर्स कहाँ से आएगी, ठीक है ना? तो इनकी अकल पे तो चूंकि पर्दा पड़ ही जाता है, काफिर की, मुशरिक की अकल की पर्दों अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, तो इसलिए जो है वो इन्होंने फैसला किया, फिरौन साहब ने अपने मुशीरों के मशवरे के साथ ये फैसला किया कि चलो ठीक है, हम एक साल जो है ना वो इनके लड़कों को मारेंगे और दूसरे साल जो है ना वो इनके लड़कों को छोड़ देंगे, ठीक है? एक साल कत्ल करेंगे, अगले साल छोड़ देंगे, फिर अगले साल कत्ल करेंगे, फिर अगले साल छोड़ देंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो जो बच्चा है ना जो ख्वाब में जिसके बारे में मुझे बताया गया है वो बच्चा कत्ल हो जाएगा, ठीक है ना? देखें कैसी जो है ना वो मत मार दी जाती है। अल्लाह ताला के है ना असल में इख्तियार में तो सब कुछ, ठीक है ना? हम समझते हैं कि हमारे इख्तियार में है, हम समझते हैं कि फिरौनों के इख्तियार में है, हम समझते हैं कि जी लीडरों के इख्तियार में है। नहीं, इख्तियार में तो अल्लाह के है, तो अल्लाह ताला फिर लीडरों की मत मार देते हैं, अकल पे पर्दा डाल देते हैं, आंखों को अंधा कर देते हैं, कानों को बहरा कर देते हैं, और फिर अल्लाह ताला अपना काम करवा लेते हैं। तो यही मामला फिरौन के साथ भी हुआ। तो फिरौन साहब ने बड़ी अकलमंदी दिखाई कि एक साल मारेंगे, एक साल छोड़ देंगे। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो क्या किया कि जिस साल जो है वो उन्होंने छोड़ना था ना, तो उस साल तो पैदा हुए हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उस साल पैदा हुए हजरत हारून अलैहिस्सलाम, और जिस साल कत्ल करना था उस साल पैदा हुए मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी बचा लिया और हारून अलैहिस्सलाम को दूसरी तरीके से बचा लिया, और यही दोनों जो हैं फिर फिरौन की तख्त ताज के डूबने का सबब बने, ठीक है? तो ये अल्लाह के काम होते हैं, हम इसके अंदर दखल अंदाजी अपनी अकल से नहीं कर सकते। बहरहाल, तो इसको बड़ा इत्मीनान था कि ये हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं। देखिए फैक्ट्री वर्कर्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना? ये जो खादिम होते हैं, ये जिस तरह क्या कहते हैं सर झुका के काम करने वाले अवामुन नास हैं, ठीक है, मवेशी हैं, डंगर हैं, ये कैसे बनते हैं? इंसान जो कि आज़ाद पैदा होता है इस दुनिया के अंदर, वो ऐसा गुलामाना जहन कैसे इख्तियार कर लेता है? उसके लिए जो है ना वो तालीमी निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए तालीमी निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है। यानी बचपन से ही ऐसी जहन साजी की जाती है कि इंसान का जहन जो है ना वो एक खास रुख में बन जाए, एक खास रुख ही में सोचना शुरू हो जाए। इसको अंग्रेजी के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन भी कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है? तो ये आपको बार बार एक ही बात सुना के, बार बार एक ही चीज जो है ना वो बता के आपके जहन को उसी तरफ जो है वो हाँक दिया जाता है। तो ये बेहतरीन, ये फायदा कहाँ से हासिल होता है? ये तालीमी निज़ाम से छोटे बच्चों के लिए ये फायदा हासिल किया जाता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर मीडिया के जरिए से ये फायदा हासिल किया जाता है, ठीक है? तो इन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये निज़ाम बनाया हुआ था जिसके जरिए से इन्होंने बनी इसराइल को अपने फैक्ट्री वर्कर्स बनाए हुए थे। फैक्ट्री वर्कर्स का लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दरमियान भी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब हम स्कूल कॉलेज से अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लेते हैं, अच्छी तालीम, तो है जिसको हम अच्छी तालीम कहते हैं, अच्छे ग्रेड्स वाली तालीम हासिल कर लेते हैं, फिर हम कॉलेज चले जाते हैं, फिर कॉलेज के बाद जो है वो कुछ लोग जो है वो यूनिवर्सिटी भी चले जाते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि जी हम इल्म के जेवर से आरास्ता हो गए, हम इल्म के जेवर से आरास्ता हो गए, ठीक है ना? लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता। हकीकत में सिर्फ जो है वो हमें बेहतर मवेशी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है, बेहतर मवेशी जो कि सर झुका करके वो काम करता रहे जिसका कि उसको उसके इंसानी आकाओं ने हुक्म दिया है, इंसानी आकाओं ने, ठीक है ना, क्यों ये बात कह रहे हैं इंसानी आकाओं ने, क्योंकि वैसे तो हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि हम आका के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन वो है हकीकी आका अल्लाह, जिसने कि हमें इस दुनिया में बंदगी के लिए भेजा। तो अल्लाह भी यही चाहता है कि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ठीक है ना, और हम अगर गुजार लें तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमें क्या देता है, जन्नत, राइट, जहां पे हमारी मर्जी पूरी होगी। लेकिन जो शैतान के मानने वाले होते हैं ना, वो भी अल्लाह का के बमुकाबिल अपना एक निजाम बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के मुकाबले पर आकर अपना एक निजाम बनाने की कोशिश करते हैं, और वो भी वही कोशिश करते हैं कि बाकी इंसान उनके ऐसे ताबे हो जाएं कि वो उनकी मान करके चलें और उनकी बंदगी इख्तियार करें, राइट, और ना इधर देखें ना उधर देखें, सर झुका करके उनकी गुलामी करते रहें, ठीक है ना। तो ये शयातीन होते हैं, इंसानी शक्ल में भी और जिन्नों की शक्ल में भी, ये बंदों को अपनी बंदगी के लिए तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, तालीमी निज़ाम के जरिए से, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मीडिया के जरिए से। ये दो उनके पास वेपन्स होते हैं, वेपन्स ऑफ मास इंडोक्ट्रिनेशन, राइट, वेपन्स ऑफ मास इंडोक्ट्रिनेशन या वेपन्स ऑफ मास एजुकेशन, ठीक है। तो फिरौन का जो निज़ाम था ना, वो बिल्कुल यही निज़ाम था, बिल्कुल यही निज़ाम था। आज के दौर में अगर आप दुनिया पे नजर डालें तो ये निजाम आपको कहाँ नजर आता है, जो बिल्कुल फिरौन का निजाम था मिस्र के अंदर, इसकी मॉडर्न फॉर्म जो है वो कौन सी वाली सिविलाइजेशन में या कौन सी वाली जगह पे आपको नजर आती है, वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है ना। ये जो यूरोप एंड अमेरिका वाली सिविलाइजेशन है ना, उनके तौर तरीके बिल्कुल वही तौर तरीके हैं जो कि फिरौन ऑफ इजिप्ट के तौर तरीके थे, ठीक है ना, फराइना, मिस्र के फराइना का बिल्कुल यही तरीका था। इसी तरीके को इन्होंने मगरबी तहजीब में इसी को अपनाया है, ठीक है ना, कि ये जो है ना वो मार मार करके कत्ल नहीं कर रहे होते खाली लोगों को, बल्कि ये लोगों की जहन साजी कर रहे होते हैं, लोगों की दिल साजी कर रहे होते हैं। और इस बात को हमारे अकाबरीन ने पहचाना, ये हम कोई नई बात नहीं कर रहे, कोई पहली दफा ऐसी बात नहीं कर रहे, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने इस बात को अच्छी तरीके से समझा। जब भी किसी कहने वाले ने यहां तक कहा कि मगरबी ये मशरकी सर को कुचल देते हैं, मगरबी दिल को बदल देते हैं, मशरकी यानी जो ईस्टर्न से जो होते हैं ना लोग, जैसे रूस हो गया या चाइना हो गया या इस किस्म के ये जो बुद्धिस्ट हो गए, ये ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है ना, ये तो बंदे बंदा ही मार देते हैं ना, ये तो बंदे ही मार देते हैं। जैसे कि चंगेज खान, उसने जब हमला किया तो उसने बंदे ही मार दिए सारे के सारे, खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए, ठीक है ना, सबको मार मार के दजला के अंदर जो है वो खून के जो है वो नदियां बहा दी, ठीक है। लेकिन मगरबी ऐसा नहीं करते, मगरबी कुछ को तो मारते हैं जो उनके बराबर के लीडर होते हैं ना, ठीक है ना, यानी उलमाए कराम, ठीक है ना, उनको तो वो मार देते हैं, सही है, लेकिन बाकी जो अवाम होते हैं ना उनको नहीं मारते, उनको कत्ल नहीं करते, उनके सरों की खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाते मशरकियों की तरह, नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं वो अपने तालीमी निज़ाम के जरिए से उनके जहन को बदल देते हैं, उनके दिल को बदल देते हैं, उनकी चाहतों को बदल देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फिरौन ने किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फिरौन ने बनी इसराइल के साथ किया था, ठीक है। समझ में आई बात किसी को, नहीं समझ में आई किसी को भी, ये आ गई समझ, माशाल्लाह। कभी कभी ठेंगा भी दे देना चाहिए, आजकल वो ठेंगे से वो थम्स अप मिलता है ना, वो तो पता चल जाता है कि हाँ भाई आ गई समझ में, हम ठेंगे पर ही राजी हो जाएंगे आपके, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। बहरहाल, तो ये जो है ना, फिर उसने अपने इस तरीके से उनको बनाया हुआ था, और ये बात तो खैर कल हमने करी थी, आज इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना, हमने और कौन सी बातें, ये जो बशीर और नज़ीर वाली भी बात करी थी, कि बशीर और नज़ीर का मतलब ये खाली नहीं है कि जो भी लोग समझ रहे हैं अच्छी बात उसके ऊपर आप खुशखबरी दे दें, और जो भी लोग समझ रहे हैं बुरी बात उसके ऊपर आप जो है ना वो डरा दें लोगों को, नहीं, बल्कि पहले इल्म को सेट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद बशीर और नजीर का काम करना पड़ेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जो अपना मकसद पूरा किया, राइट, मकसद पूरा किया, जब सहाबा से पूछा ना कि क्या मैंने अपना काम पूरा कर दिया, सहाबा ने फरमाया यक जबान हो के, जी आपने अपना काम पूरा कर दिया। तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या काम पूरा किया, कौन सा वाला काम पूरा किया? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को मुसलमान बना दिया, राइट, क्या सारी दुनिया मुसलमान बन गई नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने से पहले? क्या चले मुसलमान नहीं बनी? क्या इस्लामी मुमलिकत जो है वो मशरक और मगरब में फैल गई कि नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो मकसद बेसत पूरा हो गया है? इस्लामी सल्तनत फैल गई पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमानों की का राज हो गया, क्या ऐसा हुआ नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद? राइट, मुसलमानों ने झंडे गाड़ दिए, अफ्रीका में भी झंडे गाड़ दिए, यूरोप में भी झंडे गाड़ दिए, हिंदुस्तान में भी झंडे गाड़ दिए, चाइना में भी झंडे गाड़ दिए, क्या ऐसा हुआ? तो अलियों तो क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया आकर के इस दुनिया के अंदर, राइट, क्या किया नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आकर के, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम का काम मुकम्मल हो गया? क्या किया नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में? नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर के सिर्फ दीन को रीसेट कर दिया, सिर्फ दीन इब्राहिम को री एस्टैब्लिश कर दिया, रिवाइव कर दिया, जैसा कि वो दीन पहले अंबिया लेकर के आए थे वैसा ही दीन, उसके अंदर से बिदतों को खत्म कर दिया, उसके अंदर से खराफात को खत्म कर दिया, और जैसे अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया था वैसे ही लोगों के सामने उसको खोल के बयान कर दिया, पहुंचा दिया आगे। ये नबी अलैहिस्सलाम का काम था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कर दिया। वरना मुसलमानों के झंडे तो सिर्फ और सिर्फ अरेबिया के अंदर भी पूरा नहीं, सिर्फ जो है वो हिजाज का इलाका और यमन का इलाका और बहरीन का इलाका और कुछ ओमान का इलाका, सिर्फ यहां पे मुसलमानों के झंडे गड़े नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक जिंदगी के अंदर, राइट। बाकी सारा काम जो हुआ, जो भी थोड़ा बहुत हुआ, वो क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में तो सिर्फ फितने खत्म हुए, ठीक है ना, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में फिर सल्तनत फैलनी शुरू हुई, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में सल्तनत और फैली, राइट, और फिर जो है सल्तनत उमविया के जमाने में जो है वो स्पेन में फैली, और बाद में जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत बाद में जाके। तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो सब कुछ नहीं हुआ ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दीन को रीसेट किया, इल्म को सही किया, राइट। तो हम भी जो है ना, ये झंडे गाड़ने वाले जो हमने अपने जहनों के अंदर अपने गोल्स बनाए हुए हैं ना, झंडे गाड़ने वाले, लोगों को मुसलमान कर देने वाले, ये हम अपने गोल्स खत्म करें, राइट, दुनिया को मुसख्खर कर लेने के जो हमारे जहन के अंदर भरे हुए हैं ना, नहीं भाई, हमारा काम है वो काम करना जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया, राइट। बाकी फुतुहात अल्लाह ताला जब चाहे जिसके हाथ पे चाहे देंगे, हम तो नबी का काम करें ना, यानी बात को जो है वो सही तरीके से आगे पहुंचाएं, बिल्कुल सही, सच को सच करार दें, झूठ को सच ना करार दें, और सच को जो है वो झूठ करार ना दें, ये हमारा करने का काम है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद आखिरी बात यही थी कि जी दीन की दावत और तबलीग का काम जो है ना, वो ये नहीं है कि हम उठा करके बस उल्टी सीधे तरीके से अगले बंदे के ऊपर चीजों को डंप कर दें, बल्कि हम बात को खुद समझें, ठीक है, अच्छी तरीके से बात को समझें, गौर करें, और उसके बाद उसको अच्छे अंदाज से अगले बंदे तक पहुंचाएं, इस तरह से कि उसको बात समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो क्या हर दौर में, ये इन्होंने लिखा है कि, तो क्या हर दौर में पैगंबर दीन को रीसेट करने के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, हर दौर में पैगंबर दीन को रीसेट करने के लिए आते हैं, ठीक है। रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई नया दीन लेकर के आते हैं, बल्कि जो दीन अल्लाह ताला ने दिया था उस दीन को सही फॉर्म में लोगों के सामने फिर से पेश करने के लिए आते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो शैतान की बात मान करके दीन को खराब करना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर जो है ना वो अकायद को बिगाड़ देते हैं, बिदतों को दाखिल कर देते हैं, सुन्नतों को छोड़ देते हैं, ये सब काम जो है वो शैतान के तहत लोग करते रहते हैं। और जो अब दीन की शक्ल बन गई है, क्या उसको भी जरूरत है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुकम्मल करके गए। आपकी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो आप जरा गौर से बात को समझने की कोशिश करें। जो नबी आते हैं वो कोई नया दीन लेकर के नहीं आते हैं, नया दीन नहीं लेकर के आते हैं, बल्कि जो दीन अल्लाह ताला ने पहले से भेजा हुआ था उसी को जो है वो उसकी तजदीद करते हैं। तजदीद यानी उसको रिन्यू करते हैं, न्यू नहीं करते, रिन्यू करते हैं। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं अंग्रेजी जुबान के। न्यू करने का मतलब ये है कि कोई नई चीजें ऐड कर देना उसके अंदर, उसको तजद्दुद कहते हैं अरबी में, और उर्दू में भी उसको तजद्दुद कहते हैं, क्यों, नई चीजें ऐड कर देना, ठीक है ना। नबी किस लिए आते हैं? नबी तजद्दुद के लिए नहीं आते, नबी तजदीद के लिए आते हैं। तजदीद, तजदीद को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे रिन्यू। रिन्यू यानी दोबारा से जिंदा कर देना, दोबारा से जिंदा कर देना, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत के अंदर मुजद्दिद आएंगे। मुजद्दिद आकर के क्या काम करते हैं? तजदीद का काम करते हैं, तजद्दुद का काम नहीं करते, तजदीद का काम करते हैं, ठीक है। तो दीन के अंदर जो खराबियां अब लोगों ने ऐड कर दी हैं, बिदतें ऐड कर दी हैं, अहकामात को जो है वो गलत मलत कर दिया है, फर्ज को जो है वो मुस्तहब बना दिया है, मुस्तहब को जो है वो फर्ज बना दिया है, ठीक है ना, ये गलत मलत करना है। तो इस उम्मत के अंदर भी मुतजद्दीदीन, वो मुजद्दीदीन आते रहेंगे, ठीक है ना। मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल्फिसानी, राइट, उन्होंने क्या किया कि अकबर बादशाह ने जो दीन के अंदर हिंदुआना चीजों को, हिंदुआना अकायद को ऐड करने की कोशिश करी थी, हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन सारी चीजों को बाहर निकाल करके लोगों के सामने फिर से सही दीन की शक्ल वो पेश कर दी। इसी वजह से उनको मुजद्दिद अल्फिसानी कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि जो लोग दीन के अंदर खराबियां पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको मुजद्दिद नहीं कहा जाता, उनको मुतजद्दिद कहा जाता है, ठीक है ना, तजद्दुद करने वाला, ठीक है। बहरहाल चले, जजाकुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसके बाद फिर फरमाया कि हमने यहां तक पढ़ लिया था कि हमने आयात वगैरह का जा बजा फसल रखा था कि आप उसको लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़ें, जिसमें वो अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि तकरीर तवील बाज मुसल तकरीर तवील मुसलसल, ठीक है, बहुत तवील तकरीर हो जाए और मुसलसल जो है वो होती रहे, जैसे कि हम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, अकल सलीम हमें भी अता फरमा दे। बहरहाल 1 घंटे से ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि ना लेकर के जाएं क्लास को। तो तकरीर तवील मुसलसल बाज़ औक़ात ज़ब्त में नहीं आती, ठीक है, यानी लोगों को जो है वो समझ में नहीं आती। इसी वजह से फिर इस तरह की जो क्लासेस होती हैं, जब तक उनकी तकरार ना की जाए ना, तो बात जो है वो सही तरीके से समझ में नहीं आती। देखिए, आप लोग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुनकिरीन में से नहीं है। मुनकिरीन कौन होते हैं? इनकार करने वाले, ठीक है, आप लोग इनकार करने वाले नहीं हैं, सही है, जब भी यहाँ पे क्लास में आए हुए हैं, ठीक है ना, आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, पहले से मानने का एक मिजाज बना करके इस क्लास के अंदर आए। अगर आपका मिजाज ना होता तो आप ना आए होते यहाँ पे क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो अब आपके साथ जो है ना, वो हम जो क्लास कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर जो है ये तदरीसी क्लास है, तदरीसी, ठीक है ना, यानी एकेडमिक जिसको कहते हैं, जिसमें हम आपको जो है वो बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप जो है ना वो उसको उम्मीद है कि गौर से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं उसके, ठीक है ना। तो अब ये जो तदरीसी सेटअप होता है ना, क्लासरूम वाला सेटअप, देखें जूम की ये क्लास है, मर्दों में भी एक क्लास चल रही है, औरतों में भी एक क्लास चल रही है, जूम क्लास कहते हैं इसको, क्लासरूम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जरा ज्यादा मवाद जो है ना वो अगले बंदे को ट्रांसफर किया जा रहा होता है, ठीक है। इस मवाद को रिटेन करने के लिए, इस मवाद को समझने के लिए, क्या करने की जरूरत होती है? सबसे पहले सुनने वालों को गौर से, तवज्जो से सुनना सुनना होता है, ठीक है, तवज्जो से और गौर से सुनना होता है। और दूसरी चीज क्या करनी होती है? तकरार करनी होती है, यानी दोहराई, रिपिटिशन, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तदरीसी सेटअप है, ये एक एकेडमिक सेटअप है, ठीक है ना, ये तालीमी सेटअप कहलाता है, ठीक है। एक और सेटअप होता है, दूसरा सेटअप होता है, जिसके अंदर जो इनकारी लोग हैं, मुनकिर लोग हैं, डिनायर्स हैं, उनको आप कोई चीज बता रहे होते हैं, उनको आप कोई चीज समझा रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत कम होना चाहिए, मवाद बहुत कम होना चाहिए, दौरानिया बहुत कम होना चाहिए, राइट, ड्यूरेशन जो है ना वो लिमिटेड होनी चाहिए, और बात जो है वो बड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि उनके समझ के मुताबिक मुख्तसर और क्लियर हो बात, बलागुल मुबीन, ठीक है, क्योंकि वो लोग अभी मानने वाले नहीं हैं, वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो इनकारी हैं, वो डिनायर्स हैं, यहां पर आप प्योर जो है ना वो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अलग तकाजे हैं, उस सेटअप के अलग तकाजे हैं, और इस एकेडमिक सेटअप के अलग तकाजे हैं, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो जो फिरौन के पास भेजा गया, वो कोई एकेडमिक सेटअप नहीं था, वो तदरीसी सेटअप नहीं था, ठीक है ना। तो उसके सामने जो है वो कौलुल लय्यिना भी है, और जो है वो कम बात करना भी है, और अला मुकसिन भी है, राइट, ठहर ठहर करके आप जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिरौन ने बैठ करके मूसा अलैहिस्सलाम की बात को बहुत गौर से, तवज्जो से नहीं सुनना है, फिरौन ने बैठ करके मूसा अलैहिस्सलाम की दर्स की जो है ना वो तकरार नहीं करनी है, दोहराई नहीं करनी है, राइट, क्या ख्याल है आपका? फिरौन बैठ करके मूसा अलैहिस्सलाम की जो लेक्चर है उसकी फिर वो तकरार करेगा बैठ करके? वो तो नहीं तकरार करेगा ना। उसी तरीके से आप किसी इनकारी, किसी दुनियादार शख्स को जो है वो जब बात समझा रहे हैं, तो उसने बैठ करके आपके दर्स की जो है वो तकरार तो नहीं करनी है, क्योंकि वो तो डिनायर है, ठीक है ना। वो तो जब एक्सेप्ट करके आ जाएगा तब वो दर्स सुनेगा और फिर वो उसकी तकरार करेगा, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग सेटअप्स होते हैं, और दोनों के अलग अलग तकाजे होते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से कंडक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा अभी? सबसे मुश्किल काम है मुनकिरों को समझाना। जी, जाहिर सी बात है, इसी वजह से तो नबियों के जिम्मे ये वाला काम था, और नबी सबसे अजीम इंसान थे, मुनकिरों को उन्होंने समझाना था, अपने दौर के फिरौनों को, नमरूदों को और अबू जहलों को समझाना था। बाकी ये कि इस काम को करने के लिए जो नबियों की तैयारी भी अल्लाह ताला ने करी है ना, कि नबियों की जो है ना वो तरबियत अल्लाह ताला ने खुद करी है, और नबियों के जो है बेहतरीन अखलाक हमीदा, इन्नका अला खुलुकिन अजीम, बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन जो है वो रूहानियत और बेहतरीन जो है वो इबादतें, राइट, मुजाहदे जो नबियों ने किए, तो ये सारी चीजें फिर जो है वो मुनकिरों तक बात पहुंचाने में मदद देती हैं, मुनकिरों तक बात पहुंचाने में ये सारी चीजें फिर मदद देती हैं। हिदायत फिर भी अल्लाह के हाथ में ही होती है, हिदायत फिर भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जिस तरह से नबियों की प्रिपरेशन हुई, उसी तरीके से हम भी अपने आप को अपने मशायख के हाथों में जब डालते हैं कि आप हमारी तरबियत फरमाएं, आप हमें जो है वो सिखाएं, आप हमें हमारी हमारे अखलाक की इसलाह करें, ठीक है ना, तो हम भी फिर जो है वो नबियों के बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन नबियों के रास्ते के ऊपर चल के हम भी जो है वो नबियों वाला काम करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है, और मुनकिरों तक जो है वो बात पहुंचाने की सलाहियत फिर हमारे अंदर भी पैदा हो जाती है। लेकिन तरीका वही होता है, नबी की तरबियत नबी के शेख ने करी, नबी की तरबियत किसने करी? नबी के शेख ने। वो कौन थे? अल्लाह, राइट। सहाबा की तरबियत सहाबा के शेख ने करी, वो कौन थे? रसूलुल्लाह, राइट। ताबिईन की तरबियत सहाबा ने करी, इसी तरीके से सिलसिला आज भी चला आ रहा है, आज भी जो है ना ये जो तरबियत है, जिस जिसके थ्रू गुजर करके फिर कोई मुनकिरीन तक बात पहुंचाने के काबिल होता है, वो तरबियत जो है वो उस बंदे के शेख ने करनी होती है, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है, क्लासरूम सेटअप नहीं है, ये कोई तदरीसी सेटअप नहीं होता, ये तरबियत का अलग सेटअप होता है जो कि मुनकिरों तक बात पहुंचाने के लिए बंदे को तैयार करता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ रहे हैं कि दूसरे ये कि हमने उसको उतारने में भी हसब वाकयात तदरीजन उतारा ताकि मानी का खूब इंकशाफ हो। अब इन सब उमूर का मुक्तजा ये था कि ये लोग ईमान ले आते, लेकिन इस पर भी ईमान ना लाएं तो आप कुछ परवाह ना कीजिए, ठीक है, बल्कि साफ कह दीजिए कि तुम इस कुरान पर ख्वा ईमान लाओ या ईमान ना लाओ, ठीक है ना। क्या है, कुल आमिनु बिही औ ला तुमिनु, तुम ईमान लाओ या ना लाओ आप इनको बता दीजिए, ठीक है ना। ये मेरे ऊपर कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझको कोई परवाह नहीं, यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तफसीरन लिखा कि मुझको कोई परवाह नहीं, मतलब ये कि मेरे ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दो वजह से, अव्वल तो ये कि मेरा क्या नुकसान है इसके अंदर, मेरा क्या जरर है इसके अंदर, दूसरे ये कि तुम ईमान ना लाए तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो ईमान ले आए ना, ठीक है ना। तो मैंने तो अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर दी, काम पूरा कर दिया, जिसको ईमान लाना था वो ईमान ले आया, अब तुमने नहीं लाना तो ये तुम्हारा मसला है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, जैसे वो टेनिस खेलते हैं ना, या टेबल टेनिस खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप जो है ना जब बॉल को दूसरे के कोर्ट में डाल देते हैं, दूसरे की साइड पे फेंक देते हैं ना, अब उसको उसने हैंडल करना है, वापस फेंकना है, या उसको गिरा देना है, या अब उसका मसला है। मैंने तो बॉल उसके कोर्ट में पहुंचा दिया है ना, मैंने तो अपना काम कर दिया है ना, ठीक है ना। तो यही मामला जो है वो दावत के काम के अंदर भी होता है, हम बॉल तो पहुंचाए ना अगले बंदे तक, अब मसला ये है कि हम बॉल ही नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। तो ये तो हमारा मसला है कि हमने क्यों नहीं बॉल पहुंचाई, जब बॉल पहुंचा दे तो फिर भाई अल्लाह के हवाले और उसकी मर्जी, वो क्या काम करना चाहे उसके साथ जो भी। जिन लोगों को कुरान के नुजूल से पहले दीन का इल्म दिया गया था, ठीक है, ये जो फिर आगे फरमाया कि इन लजीन ऊतुल इल्म मिन कबली ही, कबली किसके, कुरान से पहले जिन लोगों को इल्म दिया गया था, ये कौन लोग थे जिनको इल्म दिया गया था, यानी आसमानी किताबों का इल्म दिया गया था। यहाँ पे इल्म की बात हो रही है, हुनर की बात नहीं हो रही, प्रोफेशंस की, दुनियावी उलूम की इनकी बात नहीं हो रही, ये तो मक्का मुकरमा वालों के पास भी थे, राइट। दुनियावी उलूम, हुनर, असलाह कैसे बनाना है, तो जो है वो तिजारत कैसे करनी है, ये क्या मक्का मुकरमा वालों को तिजारत करनी नहीं आती थी। दी ईलाफ कुरैश, ईलाफहिम रिहलत अश्शिताई वस्सईफ, ये किसकी चीज के बारे में बात हो रही है, तिजारत के बारे में बात हो रही है ना, कि वो गर्मियों में भी सफर करते थे तिजारत का, सर्दियों में भी तिजारत का सफर करते थे, और बड़ा कमाते थे, खूब कमाते थे, जबरदस्त इनकी जो है वो चल। तो इनके पास फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का इल्म था, राइट, इनके पास जो है वो असलहा साजी का भी इल्म था, बड़े बड़े जो है वो असलहे के इनके पास जखीरे होते थे, खुद भी बनाते थे, और जो है वो इम्पोर्ट भी करते थे, हिंद से इम्पोर्ट भी करते थे, ठीक है ना। तो ये उलूम तो इनके पास थे, लेकिन इन उलूम को यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा रहा, इनको इनको कंसिडर नहीं किया जा रहा, इन लोगों को अहले इल्म नहीं कहा जाता था, राइट। मक्का मुकरमा वालों को क्या कहा अल्लाह ताला ने, राइट, अल्लदी बाअथ फिल उम्मीयीना, ठीक है ना, वो जिसने के अपने नबी को मबऊस फरमाया जुहला में, उम्मीयीन अनलेटर्ड, तो मुशरिकीन मक्का में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उनको अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये उम्मी हैं, ये अनलेटर्ड हैं, हालांकि इनके पास जो है वो हुनर का, इनके पास जो है वो क्राफ्ट्स का इल्म था, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं ये जुहला हैं, ये उम्मी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं ना। तो अहले इल्म कौन थे, ये यहूदो नसारा थे, यहूदो नसारा, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास आसमानी किताबों का इल्म था, इनके पास अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई थी उसका इल्म था इनके पास, ठीक है, इस वजह से उनको अहले इल्म कहा गया, ठीक है। हम भी आज अपने इर्द गिर्द इर्द गिर्द देख लें कि अहले इल्म कौन है जिनको के ऊपर से इल्म दिया गया है, राइट, आसमानी किताबों का इल्म, कुरान सुन्नत का इल्म, ठीक है ना। बाकी जो आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं और जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये तो हुनर वाले लोग हैं, ये तो क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट वुमेन हैं ये लोग, हम लोग, ठीक है। तो इन लोगों को जो है ना, जिनको के इल्म पहले दिया गया था कुरान से पिछली किताबों का, इज़ा युतला अलैहिम, ठीक है ना, जब इसकी तिलावत की जाती है यानी कुरान की तिलावत, क्योंकि तिलावत जो है ना ये सिर्फ कुरान की जाती है, तिलावत का जो काम है ये पिछली आसमानी किताबों की तिलावत नहीं की जाती थी, तिलावत सिर्फ कुरान की जाती थी। ठीक है, तो जब तिलावत की जाती है उनके ऊपर तो फिर वो क्या क्या उनका हाल होता है, यखिरूना लिल अज़कान सुज्जदा, वो अपनी थोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थानवी रहमतुल्लाह ने क्या लिखा कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो थोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं, यानी अपने सरों को जो है ना वो जमीन पर डाल देते हैं सजदे में, और कहते हैं कि हमारा रब वादा खिलाफी से पाक है, इन कान वादु रब्बिना लमफ़ऊला। ठीक है, कि बेशक हमारे रब का जो वादा है ना ये तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटेड है, लमफ़ऊल, ये तो हो चुका है, ये तो होना ही है, कंसिडर इट डन। ठीक है, तो वो तो वादा खिलाफी से पाक है, बेशक हमारे रब का वादा जरूर पूरा ही होता है। ठीक है, वो यकूलूना सुबहाना रब्बिका रब्बेना, तो सो जिस किताब का जिस नबी पर नाजिल करने का वादा कुतुब सबका में किया था उसको पूरा फरमा दिया। ठीक है ना, क्योंकि हर नबी को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बारे में पहले से बता दिया था, और उस नबी ने अपनी उम्मत को भी पहले से बता दिया था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, वो खास नबी होंगे, वो अल्लाह के खास जो है ना वो बंदे होंगे, और उनके साथ रहने वाले लोग उनके सहाबा वो भी खास होंगे। ठीक है ना, तो ये वादा अल्लाह ताला ने पूरा फरमा दिया, और थोड़ियों के बल जो गिरते हैं तो रोते हुए गिरते हैं, और ये कुरान यानी उसका सुनना उनका दिली खुशू और बढ़ा देता है। ठीक है ना, कुरान को सुनते हैं उनका दिली खुशू और खुदू, राइट, उनकी खशियत, उनका खौफे खौफे इलाही, राइट, उनकी मोहब्बत इलाही की कैफियत ये कुरान को सुन करके बढ़ जाती हैं, क्योंकि जाहिर व बातिन का तवाफुक कैफियत को कवी कर देता है। ठीक है ना, क्या मतलब कि उनके बातिन में अल्लाह ताला का खौफ था, अल्लाह ताला की मोहब्बत थी, अब जब जाहिरी तौर पर अल्फाज उनके फिजिकल ईयर्स के थ्रू गुजर करके ये आवाजें, ये कुरान की तरह तिलावत जब की जाती है तो क्या होता है, साउंड्स जनरेट होते हैं कारी के मुंह से, राइट, वो साउंड्स जो हैं जब इनके कानों में, कौन से वाले कान, फिजिकल ईयर्स, राइट, फिर फिजिकल ईयर्स से होते हुए वो इंसान के इंटरनल सिस्टम के अंदर जाते हैं जहां पे उसकी रूह होती है। ठीक है, तो जब रूह की भी कैफियत मानने वाली होती है और बाहर से भी जो है वो अच्छी रूहानी खुराक मिल रही होती है, तो अब ये रूहानी खुराक इस रूह के अंदर जा करके उस रूह को तड़पा देती है, राइट, उसको गर्मा देती है। ठीक है, और इसका असर जो है फिर देखें वापस इनके इनके जिस्म के ऊपर होता है, कि इनका जिस्म जो है वो गिर पड़ता है जमीन के ऊपर, इनका सर जो है वो जमीन के ऊपर सजदे की हालत में चला जाता है। ठीक है ना, और उनकी फिजिकल आईज में से फिजिकल वाटर जिसको आंसू कहा जाता है वो निकलना शुरू कर देता है। ये देख रहे हैं कैसे जो है वो एक रूहानी चीज और जिस्मानी चीज ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, राइट, एक फिजिकल वॉइस आ रही है, फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो जो है वो फिजिकल ईयर्स से होते हुए इंसान की रूह के अंदर दाखिल हो रही है, और रूह के अंदर जो वो उसकी उस उसके जो मिक्स होने के बाद जो कैफियत पैदा हो रही है उसका असर फिर वापस जिस्म के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे जो है ना वो रूह और जिस्म आपस में एक हो जाते हैं। तो कुरान मजीद को सुनने से फायदा हासिल करना, इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, एतमाद, ईमान जिसको कहते हैं। ठीक है ना, कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है, जो ये शख्स बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं, ठीक है ना, झूठ नहीं कह रहे। तो जहन को अपना साफ करना, ये जो इश्का, ये जो एतराज होता है, ये जो डाउट्स होते हैं, शकूक होते हैं कि नहीं पता नहीं ये है अल्लाह का कलाम कि नहीं है, पता नहीं ये अल्लाह के मैसेंजर हैं कि नहीं है, या मैं नहीं मानता कि अल्लाह के मैसेंजर है, नहीं, एतमाद हो जाए, इसी को ईमान कहते हैं। ये पहली चीज है कुरान से फायदा हासिल करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो अरबी जुबान है, क्योंकि कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबी में नाजिल किया, तो अरबी जुबान की इतनी समझ कि कम अज कम कुरान सुन करके जो है वो उसके अल्फाज और उसके जो जुमले हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएं। बेशक इतनी अरबी ना आती हो कि आप अरबी में मजमून लिख सकें, या इतनी अरबी ना आती हो कि आप अरबी में बोलचाल कर सकें, नहीं, ठीक है, इतनी की जरूरत नहीं है। हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लिखने की भी जो है वो सलाहियत आ जाए, बोलने की भी सलाहियत आ जाए, लेकिन कम से कम सलाहियत क्या है, सुन करके समझने की सलाहियत, ठीक है ना, या पढ़ करके जो है वो समझने की सलाहियत, ठीक है। तो इतनी अरबी जुबान, ये तो हर मुसलमान को इतनी अरबी जुबान जो है वो सीखनी चाहिए, और सीखी जा सकती है, अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया अरबी जुबान को सीखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ईमान, एतमाद, दूसरी चीज अरबी जुबान का समझना, तीसरी चीज ये भी है कि गौर से तवज्जो से सुनना भी, क्योंकि बेशक आपको अरबी आती हो, बेशक आपको नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद भी है कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन तवज्जो से बात नहीं सुन रहे, गौर नहीं कर रहे, बल्कि जहन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं, इधर उधर जो है वो जहन गया हुआ है। तो सब कुछ होने के बावजूद, यानी ईमान और अरबी की वाकफियत होने के बावजूद, आपके ऊपर कोई कैफियत नहीं आएंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ जो है वो आपके आपको जो है वो असर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तवज्जो से बात नहीं सुन रहे, डिस्ट्रैक्टेड हैं। इस वजह से फोकस होकर के, यकसू होकर के सुनना, ठीक है ना, ये भी शराइत में से एक शर्त है, ठीक है ना, इन कैफियात को पाने के लिए ये शर्त है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और शर्त है कि गुनाहों से तौबा की हालत में होना, गुनाहों से तौबा की हालत होना, ये नहीं कि गुनाह के ऊपर जो है वो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं और अपने गुनाह को जो है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं है, या उल्टी सीधी जो जो है वो हुज्जतें बना रहे हैं अपने गुनाह के लिए। अगर ऐसी कैफियत होगी तो फिर कुरान से रूहानी फायदा हासिल नहीं होगा। बेशक ठीक है, आप जो है वो 100% मुत्तकी परहेजगार नहीं बन गए, आप जो है वो मासूम नहीं बन गए, ठीक है ना, बेशक नहीं बने, अभी भी हो जाता है गुनाह, लेकिन तौबा की कैफियत में होने का मतलब ये होता है, तौबा की हालत में होने का मतलब ये होता है कि अपने गुनाह के ऊपर हुज्जतें नहीं दे रहे, जस्टिफिकेशंस नहीं दे रहे, डिनायल फेज के अंदर नहीं है कि नहीं मैं तो कोई गुनाह नहीं करती, सारा गुनाह तो दूसरे करते हैं, ये जो है ना ये है तौबा की आप हालत में नहीं है, डिनायल की हालत में है, तब नहीं होता कुरान से फायदा फिर, ठीक है ना, तब कुरान से जो है ना वो ये वाली कैफियत वाला फायदा हासिल नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इन शराइत को हम पूरा कर लें, फिर उसके बाद हम देखें, ये जो कैफियत कुरान मजीद में लिखी है ये किस्से कहानियां नहीं है कि ये कुछ लोगों की हुआ करती थी, अब जो है वो हम उनके किस्से सुने और बस, नहीं, इनको हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस दौर के अंदर भी, इस फहाशी और यानी मौसीकी और हर किस्म की नाफरमानी के दौर में, फितने दज्जाल के दौर में, इस दौर में भी इन कैफियात को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बस इन शराइत को पूरा कर लें जो कि इस दौर में पूरी की जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे इस दौर में हैं जो कि इन शराइत को पूरा कर रहे हैं, इसी माहौल में रहते हुए, राइट, हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, दुआ तो करें ना कम से कम इसके लिए, जब दिल में चाहत होगी किसी चीज की, तड़प होगी, तो फिर अल्लाह से मांगेंगे भी ना उसके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मारिफ व मसाइल हम शुरू करते हैं इन आयात के। अब तक कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो आप लिख के पूछ लीजिएगा, हो बंद मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ चैट में, सॉरी, एक बड़ा सा मैसेज आया था वो अभी देखा है। इट शुड बी ऑल्सो ट्राई टू अप्रोच टू नॉन मुस्लिम्स विद एन इन्विटेशन टूवर्ड्स द राइट पाथ, और शुड रिस्ट्रिक्ट आवर इन्विटेशन टू डिविएटेड मुस्लिम्स फर्स्ट, एंड इन केस वी शुड रीच, व्हाट आर द बेटर वेज करंटली, शुड बी ऑल्सो ट्राई टू अप्रोच नॉन मुस्लिम्स विद एन इन्विटेशन। देखें, ये कोई तरतीब नहीं है कि पहले जो है वो डिविएटेड मुस्लिम्स को ठीक करें, फिर उसके बाद जो है वो नॉन मुस्लिम्स को अप्रोच करेंगे, या जो है वो पहले नॉन मुस्लिम्स को अप्रोच कर लें फिर उसके बाद जो है वो डिविएटेड मुस्लिम्स को अप्रोच करेंगे, नो, ऐसी कोई तरतीब नहीं है, ऐसी कोई जो है वो प्री डेजिग्नेटेड ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डर ये है, यानी ऑर्डर मतलब तरतीब, ठीक ठीक है ना, व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट कम्स सेकंड, व्हाट कम्स थर्ड, ऑर्डर क्या है, तरतीब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, जो 5 फुट का, 6 फुट का, 5.5 फुट का, जितना भी जो है ना वो बदन है ना, वहां से अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन का जो जो इल्म हासिल करना और उसको अमल में लेकर के आना, वो अपने वजूद से, और फिर उसके बाद द वन हु इज क्लोजेस्ट टू यू, राइट, द वंस हु आर क्लोजेस्ट टू यू, अब वो नॉन मुस्लिम है आपके खानदान वाले या मुस्लिम है आपके खानदान वाले, सबसे पहले अपने घर से शुरू करना, ये है तरतीब नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई और सिखाई हुई, सहाबा कराम की के अमल में लाई हुई, यही तरतीब है, ठीक है ना। अब चाहे आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई नॉन मुस्लिम रहता हो, कोई डिनायर रहता हो, या आपके घर में जो है वो मानने वाला लेकिन गुनाहगार रहता हो, वहां से काम शुरू करना, और फिर उसके बाद वहां से एक्सपैंड करते हुए अपने आसपास में जो जानने वाले हैं, जो अब मिलने वाले हैं, चाहे उनमें नॉन मुस्लिम्स हों चाहे मुस्लिम्स हों, बात समझ में आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो दिस इज द तरतीब, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, शुरू कैसे करें, इल्म हासिल करने से शुरू करें, ठीक है ना, बल्कि तौबा से शुरू करें, और तौबा के बाद, कल पिछली क्लास में जो कल हुई थी उसमें तरतीब बताई थी, अपनी गलतियों गुनाहों के ऊपर तौबा करना, वहां से फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगना, फिर इल्म हासिल करना, ठीक है ना। जब किसी इंसान को खुद दीन का ना पता हो, वो क्या दीन को जो है वो आगे समझाएगा, ठीक है ना, अजम्पशंस के ऊपर काम नहीं करें, नहीं मुझे तो पता है अब जो है मैं लोगों को समझाऊंगा जो मुझे पता है, नहीं, मोस्ट लाइकली आपको गलत पता है, क्योंकि इल्म जो है वो दीन का इतना खराब हमारे तक पहुंच, हमारे हमारे अंदर हो चुका है, इतना खराब जो है वो इल्म हो चुका है, ठीक है ना, कि हम उस खराब इल्म के साथ जब दावत तो तबलीग का काम शुरू करते हैं तो हम जो है ना वो यानी बहुत बुरा कर रहे होते हैं, बहुत बुरा कर रहे होते हैं। तो मसला इवन सिर्फ हमारे अखलाक का भी मसला नहीं है, डोंट अज्यूम कि बस मेरे अखलाक अच्छे नहीं है, अखलाक अच्छे हो जाएंगे तो फिर जो है वो मैं दीन की दावत के काबिल हो जाऊंगा, नहीं, हमारे फैक्ट्स खराब हैं, हमारे हमारे जो जो सोच है, हमारी फिक्र है, हमारा दीन के बारे में जो एटीट्यूड है और दीन के बारे में हमारे जो मालूमात हैं वही गलत हुई भी हैं, तो इल्म से शुरू करें, और जैसे जैसे इल्म हासिल होता जाए वैसे वैसे उसको आगे फैलाने की मेहनत करें, सेल्स का काम करें, सेल्स, राइट, जैसे जैसे आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आता रहे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को समझें, ठीक है ना, उसके बगैर जो लोगों को हार्म्स होते हैं, राइट, तो उसको समझें, और फिर बेनिफिट्स और हार्म्स की नॉलेज के साथ लोगों को बताएं, ठीक है ना। जैसे आपको जो है वो हम कहें, अगर आप नाजीज खातून नाम है शायद, आप जो है वो कोई कपड़ा सेल करना चाहती हैं, आप जो है वो कोई और जो है वो अप्लायंस सेल करना चाहती हैं, ठीक है ना, कि भाई इस अप्लायंस के ये बेनिफिट्स हैं, राइट, ये जूसर है, ये जो है वो ब्लेंडर है, ये जो मेरे किचन के अंदर मुझे इससे ये फायदे हासिल हुए, राइट, और जब मेरे पास ये नहीं था, जब ये अप्लायंस, जब ये ब्लेंडर, जब ये जूसर मेरे पास नहीं था तो मेरी जिंदगी इतनी खराब थी, मेरी जिंदगी में इतनी तकालीफ थी, राइट, मुझे इतना जो है वो ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था, फिर भी मेरा काम सही नहीं होता था, एक ब्लेंडर आप ऐसे सेल करेंगी, समझते हैं ना ब्लेंडर क्या होता है, जूसर क्या होता है, अप्लायंस क्या होते हैं किचन के, राइट, दिस इज द वे टू सेल एन अप्लायंस, एग्जैक्टली यही तरीका है दीन को सेल करने का, सहाबा कराम ऐसे ही सेल किया करते थे दीन को, कि इस दीन के आने से हमारी जिंदगी में ये फायदे हुए, ऐसे फायदे हुए, ऐसे फायदे हुए, और इसके बगैर जो है वो हमारी जिंदगी में ये नुकसानात थे, हम एक दूसरे को ऐसे जो है वो जुल्म किया करते थे, हम दूसरों के हुकूक नहीं दिया करते थे, हम लड़ाई किया करते थे, हम जो है वो अपने जिंदगी को जाया किया करते थे, राइट, इन चीजों को लिखें अपने पास और इनको स्पेल आउट करें लोगों के सामने, बताएं लोगों को बेनिफिट्स और जो इसके ना होने की वजह से जो इसके आपके पास हार्म्स थे, इसके नुकसान थे, यही है सेलिंग का तरीका, ठीक है, यही है दीन की तबलीग का तरीका। सबसे पहले किसी को बताना हो तो अकीदे के बारे में बताना होगा, क्योंकि अकायद ही खराब हैं। जब आप अकीदे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर वहीं से जो है ना, वो आप अनफॉर्चुनेटली भाई अल्फाज के मफहूम जो है ना, वो बड़े अहम होते हैं। ठीक है, तो अब लफ्ज अकीदा जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे जिस जो जो जहन में एक बात आती है ना आजकल के दौर में, वो आती है कि इंतहाई एक एकेडमिक किस्म का, कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई, यानी कोई मसला। ठीक है ना, अकीदे का लफ्ज हम इस माने में इस्तेमाल करना शुरू हो गए, हालांकि इसका यह मतलब था नहीं। ठीक है ना, तो आई डोंट एग्री विद यू। ये जो आप जो कह रही हैं ना अकायद को बताना, इसी वजह से आजकल हम जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोच को बताना, फिक्र को बताना, सोच कैसी सोच होनी चाहिए, क्या सोच सही है, क्या सोच गलत है, अल्लाह के बारे में क्या सोच सही है, नबियों के बारे में क्या सोच सही है, दीन के बारे में क्या सोच सही है और क्या सोच गलत है। ठीक है ना, इसको समझें और इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा, मारिफ व मसाइल में हजरत लिखते हैं, कितना टाइम लग गया के 5 मिनट, वलकद आते ही ना मूसा तीसरा आयात, कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 आयात बय्यिनात अता फरमाने का जिक्र है। बय्यना युबय्यिनु तिबयानन, ठीक है, खोल खोल करके बयान करने वाली चीज, बयान की हुई चीज, तो 9 आयात, खुली ही हुई 9 आयात, बिल्कुल अपेरेंट, बिल्कुल क्लियर। आयत का लफ्ज मोजजे के मानी में भी आता है, और आयात कुरान यानी अहकाम इलाहिया के मानी में भी इस जगह दोनों मानी का इस्तेमाल है। ठीक है, अहकाम इलाहिया के माना भी हो सकता है यहाँ पर लफ्ज आयात, और मौजज़े भी मानी हो सकते हैं लफ्ज आयात के। इसीलिए एक जमात मुफस्सिरीन ने, मुफस्सिरीन की एक जमात ने इस जगह आयात से मुराद मौजजात लिए हैं, और 9 के अदद से ये जरूरी नहीं है कि 9 से जायद ना हो। ठीक है, तो मौजे के बारे में पिछली सबसे पहली क्लास जो थी रमजान मुबारक की, उसके अंदर तफसील से बात हो चुकी है, अगर किसी ने मिस कर दी हो तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं वहां पे। तो 9 का मतलब जरूरी नहीं कि 9 से जायद ना हो, क्योंकि अरबी जुबान के अंदर भी, जिस तरह हम उर्दू में भी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं होते, बल्कि एक 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 एग्रीगेट मीनिंग में होते हैं, एक एक अप्रोक्सीमेट मीनिंग में होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से 9 से जायद भी हो सकते हैं, मगर इस जगह 9 का जिक्र किसी खास अहमियत की बिना पर किया गया है, जो कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उसके ऊपर मजीद कलाम नहीं किया, मजीद बात नहीं करी कि 9 की क्या अहमियत थी। आगे पढ़ते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये 9 मोजज़ात इस तरह शुमार फरमाए हैं। नंबर 1, असाई असा मूसा जो अजदहा बन जाती थी, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो छड़ी होती थी, जो वो अजहा बन जाती थी। दूसरा, यदे बैगा जिसको गिरेबान में डालकर निकालने से चमकने लगता था, यानी आपका जो सीधा दायां हाथ होता था उसको अपने गिरेबान में, जैसे कि वो कुर्ता हो लेकिन कुर्ते की जो गला हो ना वो थोड़ा सा बड़ा हो, तो आप अपना हाथ जो है वो गले के अंदर डाल सकते हैं और अपने लेफ्ट शोल्डर, ये लेफ्ट जो है वो गिरेबान के बाजू के अंदर जो है उसको डाल सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे करके जब हाथ को बाहर निकालते थे तो वो चमकने लगता था। तीसरी, जुबान में लुकनत थी वो दूर कर दी गई, ठीक है, बगल, जी उसको बगल कहते हैं, तो जुबान में लुकनत दूर कर दी गई, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक खुली निशानी थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान की लुकनत जो थी ना, ये फिरौन के दरबार में भी मशहूर थी। फिरौनी को ये पता था, यानी फिरौन को खुद ये पता था कि ये मूसा जो है वो बात भी नहीं कर सकता, मूसा जो है वो उसके अलैहिस्सलाम उसके महल में ही परवरिश पाए थे ना, उसकी निगाहों के सामने परवरिश पाए थे। ठीक है, तो सब कुछ पता था उसको मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इसी वजह से लोगों को कहता था कि तुम जो है वो मेरी जो तरक्कियात हैं उनको छोड़ करके तुम एक ऐसे शख्स की बात सुन रहे हो कि जिसको बात भी करनी नहीं आती। ठीक है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस नुक्स के साथ पैदा किया था, लेकिन इसी नुक्स के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी अताअत की वजह से, उनकी जो है वो मोहब्बत की वजह से उनको वो मुकाम दिया जिसका ताल्लुक जो है वो इस खास नुक्स के साथ ही था, जो कि किसी और को वो मुकाम नहीं दिया, किसी और को वो मुकाम नहीं दिया। यानी अपने से कलाम करने का शर्फ इसी दुनिया के अंदर किसी और महबूब से महबूब तरीन हस्ती को अल्लाह ताला ने वो मकाम नहीं दिया, अपने खलील को वो मकाम नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, लेकिन इस दुनिया से बाहर ले जा करके कलाम फरमाया। इस दुनिया में किससे कलाम फरमाया? सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से, जिनको कलाम करने के ऊपर कुदरत हासिल नहीं थी। राइट, तो अल्लाह ताला जब कभी कोई कमी देते हैं ना, जब किसी सलाहियत में कमी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करते हैं ना, अल्लाह ताला उस कमी को ही हमारी बड़ाई का सबब बना देते हैं। वमा ज़ालिका अलल्लाही बेअज़ीज़, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट, तो कभी भी अपनी किसी कमी, कभी भी अपनी किसी चीज के अंदर जो जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई कोई देन है, उसके अंदर कोई कमी हो ना, उसके ऊपर जो है वो शिकायत और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए अकलमंद बिजनेसमैन की तरह। उसके पास जो है ना, वो अगर कोई चीज अगर कम भी हो ना, कोई मुश्किल भी आ जाए, तो जो अकलमंद बिजनेसमैन होता है ना, वो उसी के अंदर जो है वो अपना फायदा निकाल लेता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से एक अजीब बात दिल में डाली। अभी हजरत को, हमारे हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दाम ने कहा, तुम तशरीफ लाए हुए थे, तो उनको ये आजिज एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जा रहा, तो हजरत ने रास्ते में ये वाकया सुनाया। राइट, ये एक लतीफा टाइप का वाकया। फरमाने लगे कि लाहौर में एक गाजर और अनार बेचने वाला था, ठीक है ना, तो उसने अपना ठेला लगाया हुआ था, गाजर और अनार का ठेला, ठीक है। तो उसका जो है ना, वो ना कोई गाजर खरीद रहा था, गाजर का जूस बल्कि बेच रहा था, और अनार का जूस, तो कोई खरीदने वाला ग्राहक नहीं आ रहा था उसके पास। तो उसने जो है ना, वो एक फ्लायर या एक पैम्फलेट या कोई बैनर शैनर टाइप की चीज बनाई, और उसने जो है वो बोलना भी शुरू किया, आवाजें लगानी शुरू करी कि अगर अगर आपका खून अपनी बीवी से लड़ करके खुश्क हो गया है, तो आप इस खून में, इस खून की कमी को पूरा करने में, पूरा करने के लिए हमारे पास से गाजर और अनार का जूस खरीद करके जाए। राइट, अपने इस खून के खुश्क होने की वजह से, खून की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास से गाजर और अनार का जूस लेकर के जाए, ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि उसके बाद जो है ना, उसके पास ग्राहकों की लाइन लग गई, ठीक है, ग्राहकों की लाइन लग गई उसके पास, ठीक है। तो क्या चीज थी? देखिए, वो एक मुश्किल में था, एक मुसीबत में था, कोई उसका जो है वो माल खरीदने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उसी चीज को कैपिटलाइज किया और ऐसी कोई बात करी कि जिसकी वजह से उसकी जो है ना, वो वही चीज जो है वो फायदे की चीज बन गई। इसी तरह से और भी बहुत सारे वाकयात, इस वसारे तो जहन में नहीं आ रहे, ठीक है। तो कभी भी है ना, इसके ऊपर परेशान नहीं हुआ करें, और शिकवे शिकायत या ये सोचना कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। लोगों के घरों के अंदर औलादें होती हैं, कभी किसी का कोई चीज खराब होती है, कभी किसी के अंदर कोई चीज कमी होती है, कभी किसी को कोई मसला होता है। नहीं, ये मेरे रब का अगर हुक्म है, रब की मर्जी है, तो मैं इसी के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी। राइट, अल्लाह ताला इसी को मेरे लिए इज्जतों का सबब बना देंगे, इसी को मेरे लिए कामयाबी का सबब बना देंगे। अब किसी बच्चे का जो है वो जुबान के अंदर लुकनत होना, बात करने की सलाहियत का ना होना, ये माँ बाप के लिए कितनी बड़ी जो है वो मुश्किल का मामला होता है ना, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो उसी को अजमत का सबब बना दें उसके लिए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को, वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। राइट, अल्लाह ताला ने मूसा से जो है वो कलाम किया, किसी और से कलाम नहीं किया अल्लाह ताला ने। क्या फरमाते हैं कि इसी तरह का एक वाकया आपने सुनाया था, वाटरमेलन, शुगर फ्री वाटरमेलन, उसके भी उसका भी बिक नहीं रहे थे। जी, वो भी हजरत से ही सुना था गालबन, कि उसका जो है ना वो तरबूज जो था वो बिक नहीं रहा था, तो वो मीठे तरबूज नहीं मिले उसको मार्केट से, उसको पता नहीं था, शायद उसने तरबूज खरीद लिए, अब जो है वो मीठे नहीं थे तो लोग खरीद नहीं रहे थे उसके पास, तो उसने जो है ना वो आवाज लगानी शुरू करी कि शुगर फ्री वाटरमेलन मेलन खरीद लें आप मेरे पास आकर के, शुगर फ्री वाटरमेलन मेलन खरीद लें, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है। राइट, अब वाटरमेलन शुगर फ्री, लोगों को भी पता है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अल्लाह ताला ने शुगर फ्री जो है वो वाटरमेलन पैदा नहीं किए हैं। मतलब इसका यही है कि बस फीके हैं, मिठास नहीं है इनके अंदर, लेकिन
हाउ डिड पीपल गेट अट्रैक्टेड, लोग जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए और उसकी बिक्री कैसे बढ़ गई, सिर्फ आई कैचिंग फ्रेज की वजह से, राइट, ईयर कैचिंग फ्रेज की वजह से, मौके की मुनासिब बात करने की वजह से, यही सेलिंग टेक्निक होती है। अच्छा, अब हम इसका मतलब ये नहीं कि आपको धोखा देने की तरकीब दे रहे हैं कि दावत तब्दील जो है ना वो धोखे के जरिए से करना शुरू कर दें, ठीक है ना, क्योंकि धोखा और झूठ जो है ये जायज भी नहीं है, चाहे वो माल बेचने के लिए किया जाए, चाहे वो दीन बेचने के लिए किया जाए, धोखा और झूठ दोनों सूरतों में जायज नहीं है। लेकिन बात बंदा ऐसी करे कि वो फैक्चुअली गलत भी ना हो, फैक्चुअली गलत भी ना हो, लेकिन फिर भी लोगों की तवज्जो को जो है वो मबजूल करने के काबिल हो जाए, का काम कर जाए, इसके अंदर बुराई नहीं है, ठीक है ना, कि एज लॉन्ग एज उसके अंदर झूठ ना हो। देखिए, अब उसने शुगर फ्री वाटरमेलन जो बोला तो उसकी एक तावील निकाली जा सकती है, हाँ भी फीके हैं मेरे वाटरमेलन, तो उसको मैंने शुगर फ्री बोल दिया, तो वाकई फीके तो थे वो, लेकिन लोगों की तवज्जो तो हो गई ना मबजूल, राइट, उस तरफ तो हो गई, मायल हो गई, काम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बात की जा सकती है। बहरहाल, टाइम कितना रह गया, 5 मिनट ऊपर ही हो गया, तो है ना, बाकी ये जो जुबान में लुकनत थी वो दूर कर दी गई, ये तीसरी आयत आयत जो है वो पढ़ ली, बाकी जो है इंशाल्लाह हम कल ही क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ अमल तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।